ओम शांति। आप सभी तपस्या में मगन हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी बहुत भाग्यशाली है कि सबसे पहले जो इस सीजन के समझो ये पहली भट्टी करने का चांस आप लोगों को मिला है, तो खुद के लिए थोड़ा ताली बजाइए। यहाँ आने के लिए आप सभी ने बहुत ही बाबा के पास अर्जी डाली होगी, तभी जाके आप यहाँ पहुंचे हैं। पहली बार यहाँ रहने का किसको मौका मिला है, हाथ उठाए जरा। देखो दीदी जी, पहली बार यहाँ, क्योंकि यहाँ तो विंग के प्रोग्राम चलते हैं, वीआईपी के प्रोग्राम, लेकिन सबसे पहले आपको चांस मिला है। और सबसे अगर धन्यवाद के पात्र है तो हमारी दीदी, क्योंकि इतने सारे बातें होने के बाद भी दीदी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ भट्टी होगी। तो दीदी को बहुत बहुत थैंक यू दीदी जी। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आपके अंदर जो कुछ क्वेश्चन होते हैं दिल के अंदर की, तो उसका जवाब हमें मिले, सही जवाब मिले। तो आज हम दीदी के सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे, दीदी उनका जवाब देगी। जो आपके दिल के अंदर जो प्रश्न है वही हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दीदी जी का हम स्वागत करते हैं, अपने खुद के घर में ही स्वागत करते हैं। दीदी का घर है, बाबा का घर है, तो बाबा के घर में दीदी का पहले स्वागत करते हैं। वैसे दीदी जी का परिचय क्या दे, दीदी जी एक संपन्न परिवार से बिलोंग करती है। उस जमाने में उनके पिताजी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, है ना दीदी? तो उस जमाने में दीदी के घर में परिवार में कार हुआ करती थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी परिस्थिति में भी दीदी जी का एक संकल्प था कि मैं बनूंगी तो डॉक्टर बनूंगी और गांव-गांव में जाके सेवा करूंगी, गरीब लोगों की सेवा करूंगी। बचपन से ही दीदी के अंदर वो संकल्प था, लेकिन बाबा ने देखो, दीदी का तो एक संकल्प था कि छोटे से गांव में जाके सेवा करूंगी, लेकिन बाबा जानता था, तो बाबा ने डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन सारे विश्व के गांव-गांव में जाके अलग, मैं समझता हूं कोई देश बचा नहीं होगा जहां दीदी गई नहीं होगी और सेवा नहीं की होगी। तो दीदी जी का जो ज्ञान मिला दीदी जी को 1962 में मिला, और 1966 में तो सेवा में समर्पित भी हो गए। और ये विशेषता है कि यज्ञ में सबसे पहला जो दहेज मिला सेंटर के रूप में, इनके पिताजी ने दिया, इनके परिवार वालों ने दिया। मैंने देखा कि जब से दीदी ज्ञान में आई, तब से दीदी जी का एक विशेष पाठ रहा कि हाँ बाबा, हाँ दादी, मतलब जो बड़े हैं उनको हाजी हाजी करते रहे। और उस समय एक इंग्लिश हैंड्स, इंग्लिश बोलने वाले गिने चुने लोग थे, उसमें दीदी का भी नाम था। तो जब भी कोई बड़ा वीआईपी हो या कहीं विदेश की सेवा हो, दीदी का नाम पहले आता था। तो दीदी कभी ना नहीं कहा कि मुझे वहां कैसे रहना, क्या करना, क्या, तो नहीं, जो दीदी ने, बाबा ने कहा, जो बड़ों ने कहा, वो दीदी तुरंत करते करते, मतलब हाजी का पार्ट उनका दीदी का पक्का था। और हाजी करते करते, देखो हाजी करते करते दीदी जी पूरा संसार का चक्कर लगाते हुए फिर से यहां ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे बाबा पूरे दुनिया का चक्कर लगा के फिर अपने पास एक बड़े पद पे बिठा के इतनी बड़ी सेवाएं करा रहे हैं। तो दीदी जी, आपको देखा हमने सदा कमल फूल समान, चाहे कुछ भी हो, कोई परिस्थिति आए, दीदी सदा खुश मस्त रहती है। तो दीदी जी, हम ये प्रश्न करते कि हम लोग भी आपकी जैसी अवस्था कैसे बनाए, आप कौन सा ऐसा अभ्यास करते जो सदा न्यारी और प्यारी रहती, आप उसके बारे में हम सबको बताइए।
ओम शांति। बाबा ने हमें शुरू से न्यारा रहने का संस्कार दिया था। जब हमने लौकिक घर छोड़ा और सेंटर पर रहने आई तो हमें तो खुशी थी ही, परंतु हमारे लौकिक वालों ने किसी ने विरोध न किया न रोए। हमारी बहनों की शादी हुई तो माँ रोती थी, परंतु मैं सेंटर पर रहने गई तो रोई नहीं। और शुरू से ही कभी हमें चाचा के घर रहना होता था या कजिन के घर रहना होता था, मैं आराम से रहती थी, मतलब घर से कोई अटैचमेंट नहीं था। नहीं तो क्या होता है, कईयों का अपने घर से अटैचमेंट होता है, दूसरे के घर में उनको जाना पसंद नहीं होता था। तो बाबा ने आकर हमें प्यारा बनाया, क्योंकि विदेश में उनके पास साधन बहुत है, परंतु माँ बाप का परिवार का प्यार नहीं मिलता। तो उन्हों की यही इच्छा रहती है कि ब्राह्मण परिवार से हमें प्यार मिले। तो बाबा ने हमें प्यारा रहना भी सिखा दिया, क्योंकि बाबा ने इतना प्यार दिया जो हम भी मास्टर प्यार के सागर बन जाते हैं। और बाबा ने हमें खजाने दिए, ये स्मृति से खुशी रहती है, क्योंकि जब से बाबा के बने, ज्ञान का, शक्तियों का, प्यार का, आनंद का सब खजाना बाबा देते रहते हैं। तो जब ये बुद्धि में रहता है कि बाबा ने हमें कितना दिया है, तो नेचुरली है खुशी रहेंगी। सुख के सागर के बच्चे बन गए तो दुख क्यों हो। वैसे भी लौकिक में भी हमें सब कुछ मिलता रहा था, तो 1950 में आपने कहा एक कार नहीं थी, दो कार थी। और चार नौकर थे, दो घर की सफाई और गार्डन देखने के लिए, एक आया थी छोटे बच्चों को देखने के लिए, और एक रसोई करने वाली थी। तो बाबा ने धन संपत्ति, परिवार का सुख, परिवार में भी बल हमारा परिवार बड़ा था, 6 बहनें 2 भाई और 2 कजिन, हमारी फूफी की लड़की और एक लड़का हमारे साथ रहता था और हमारी दादी और चाचा, तो बड़ा परिवार था। और बाबा ने हमें ऑलराउंडर बनाया था। जब रसोई करने वाली नहीं आती थी तो हम लोगों को, लड़कियों को, खाना पकाना पड़ता था। तो समझो 13-14 आदमियों का तो खाना पकाना होता था। उसमें भी जो नौकर होते थे 10-10 रोटी खाते थे। और उनके लिए चावल अलग बनते थे। तो खाना पकाना भी पहले से ही बाबा ने सिखा दिया था। और उन दिनों में घर में सारा अनाज भर के रखते थे। तो बोरी की बोरी आती थी, उसको साफ करके तेल लगाकर या मर्क्यूरी की टैबलेट डाल के अनाज भर के रखना होता था। और मसाला भी घर में बनाते थे, हल्दी कूट कर घर में बनाते थे। तो समझो अचार वगैरह घर में बनाना, तो ये सब।
तो परिवार में आप पहले से ऑलराउंडर थे, क्योंकि मुझे हमारे बाहुबाई मिले थे लेस्टर के। तो जब दीदी विदेश सेवा करने के लिए गई थी तो उन्होंने कहा मैं काम पे जाता था, दीदी रोटी बनाती थी, फिर हम खाते थे, फिर सेवा में जाते थे। तो ये जो शुरू से जो ट्रेनिंग मिलती है घर में, ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ आपको कि सबसे पहले बाबा का परिचय मिला आपको, और 2 मास के अंदर ही आपने बाबा को एक फोटो दिया था, एक पत्र दिया था रतनमणि दादी के पास, ब्रह्मा बाबा के पास। तो ब्रह्मा बाबा ने उसका क्या जवाब दिया था आपको, क्या रेस्पॉन्स मिला था, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
ब्रह्मा बाबा की परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। सिर्फ फोटो देखकर, और हो सकता है दादी ने कुछ सुनाया भी हो एक दो, तो बाबा हमें पत्र जो लिखता था उसमें कई टाइटल देते थे, सरल चित्त है, ऑनेस्ट है, निर्मल है, रूहानी डॉक्टर है, निर्मल आश्रम है, आदि आदि टाइटल दिए। पर जब मैं मधुबन दादी प्रकाशमणि के साथ आई, क्योंकि मुंबई में दादी प्रकाशमणि 64 से थी, तब बाबा ने कहा कि ऐसी मुझे 30 कुमारियां मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग बना लूं। तो समझो ज्ञान के बाद जैसे भी निश्चय हुआ, तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा मेरा विचार नहीं है कि मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस करूं, मैं इस सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा ने कहा नहीं, तुम ब्रह्मा बाबा से जब मिलो तब फाइनल करना। फिर ब्रह्मा बाबा से मिली, जब मधुबन आई तब बाबा से मिली। मम्मा तो पहले दिन ही मिली थी, और बम्बई में तो बहुत दादियां थी, दादी निर्मल शांता, दादी पुष्प शांता, दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी, दादी शिलेंद्रा, दादी ब्रिजेंद्रा, सब बम्बई में थे। तो बाबा की कहानी सब सुनाते रहते थे। तो क्या था कि जब मैं पहली बारी मम्मा अरे मम्मा से मैं 4 मास के बाद भोजन पर उषा बहन ने बुलाया था तो वहाँ एक भाई था, उसने बताया, कानपुर का भाई था, कि कैसे वो बाल भवन में रहता था और बच्चों की देखभाल भी करता था, नौकरी भी करता था, और नौकरी में जो आता था वो सेंटर पर दे देता था। जब उसका अनुभव सुना तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी जो नौकरी करती हूँ, कमाई करती हूँ, वो मैं यज्ञ में दूंगी। क्योंकि उसके पहले मैं जो मेडिकल प्रैक्टिस करती थी, नौकरी करती थी, क्योंकि मैंने सोचा था गांव में जाएंगी तो मुझे ऑलराउंडर वहां भी बनना पड़े, क्योंकि गांव में तो कोई बड़े कंसल्टेंट वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं मेडिसिन में, फिर मिडवाइफरी हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे मैंने नौकरी की। तो मैं 90% मेरी इनकम नेशनल डिफेंस फंड में देती थी, क्योंकि 1962 में जब मैं ज्ञान में आई तब इंडिया और चाइना की युद्ध चल रही थी, तो जो गवर्नमेंट में नौकरी करते थे उनको कहा गया कि यदि आपको डिफेंस फंड में कुछ देना है तो अपने पगार से ही दे सकते हो। तो मैं 90% देती थी, 10% अपने खर्च के लिए, पॉकेट मनी के लिए रखती थी। तो जब ज्ञान में आई तो मैंने 80% यज्ञ में देना शुरू किया, 10% नेशनल डिफेंस फंड और 10% अपने पास रखती थी। तो जैसे समर्पित हो ही गई थी। फिर बाबा से जब पूछा तो बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी और जिस्मानी। तो हमने कहा ठीक है बाबा।
दीदी आप मेडिकल लाइन थी आपकी, आप मेडिकल की स्टडी कर रहे थे, मेडिकल के स्टूडेंट होते तो ये आत्मा परमात्मा इन चीजों में ज्यादा भरोसा तो रखते नहीं है, और फिर उसमें भी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, ये सारी बातें, तो आपको कौन सी ऐसी बात जो लगी मन को कि सचमुच ये हो सकता है या भगवान आ सकता है, ऐसा कौन सी बात आपको मतलब टच हुई?
वो समझने में या उसको स्वीकार करने में मुझे 4 महीना लग गया कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा थे। निराकार भगवान है वो तो हमने सहज मान लिया, क्योंकि वैसे भक्ति के धर्म के संस्कार तो थे ही, और स्कूल की कॉलेज की छुट्टियों में हम रामायण भागवत आदि आदि पढ़ती भी थी। तो क्या हुआ कि हमने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी, दादियों को क्या क्या अनुभव हुआ ब्रह्मा बाबा द्वारा, ये अनुभव सुने जब, तब मैंने कहा कि ये तो भगवान ही करा सकता है इतना जादू। क्योंकि जैसे निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि उसको पहले तो ऐसे लगा कि ये मेरे पिता को ये लोग भगवान समझते हैं, इन बहनों में थोड़ी कोई इतनी अक्ल नहीं है। परंतु क्या हुआ कि एक बारी वो क्या करती थी, पिता के घर जाती थी ना सत्संग पूरा होने के बाद, ताकि उसको सत्संग अटेंड ना करना पड़े। पर एक दिन वो जब गई सत्संग के बाद, तब तक मनमोहिनी दीदी ट्रांस में गई थी, तो उसने आकर देखा कि ये एकदम प्रसन्न चित्त है, तो उसने कहा कि सुनाओ तुमको क्या अनुभव हुआ, क्यों क्या बैठी रही थी। तो दीदी ने कहा कल आना, अभी तो रात को देरी हो गई है, तुम कल आना। तो उसने बाबा ब्रह्मा बाबा को कहा कि कल मेरे लिए आप कार भेजना, क्योंकि उन दिनों में बड़े आदमी पैदल नहीं जाते थे। तो बाबा ने कहा देख लेंगे कल की बात कल। और उसी रात में उनको डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी होते उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो उसने तब कहा कि मेरा बाप में भगवान जरूर है, जो उसको मालूम था कि मैं पहुंच नहीं सकूंगी, इसलिए कहा कि कल की बात देखेंगे। पहले तो उसको बुरा लगा कि मेरे पिताजी मुझे कार नहीं भेजते हैं, देखेंगे कहाँ, ऐसे नहीं कहा उमंग उल्लास से कि हाँ हाँ जरूर आना मैं भेजूंगा। फिर उनको जब एक बारी यज्ञ में आने के बाद 104 डिग्री टेम्परेचर था, तो उन दिनों में वो लोग डॉक्टरों को नहीं देखते थे, कहते थे डॉक्टर तो शूद्र है, हमारे शरीर को टच ना करे। तो उसने कहा कि उस समय वो लोग क्या करते थे, संदेशी को भेजते थे शिव बाबा के पास और पूछते थे क्या दवाई करनी है। तो संदेशी ने कहा कि आइस वाटर से स्नान करें। तो बाबा ने फिर से कहा संदेशी को कि पूछो भाई सचमुच आइस वाटर से स्नान करें। तो कहा हाँ। तो बाबा ने आइस वाटर बाल्टी में मंगवाया और निर्मल शांता दादी स्नान करने जा ही रही थी, तो बाबा ने फिर से संदेशी को पूछा कि भाई पूछो। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट करता था कि इसका विश्वास कितना है। स्नान करने के लिए तैयार हो गई, अभी तो उसको सिर्फ जैसे पुराने जमाने में करते थे आइस वाटर बैग यहाँ रखी और यहाँ रखे और उसका बुखार निकल गया। ऐसे कई लोगों को बीमारी में भी बाबा का संदेश अच्छा कर देता था।
जी दीदी, तो हमने भी सुना था जब निर्मल शांता दादी को बाबा ने कहा देखेंगे, तो उनको बहुत बुरा लगा था और बहुत रोई थी कि मेरा बाप को क्या हुआ, मेरे बाप को देखूंगा बोला, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये बात हुई तब उनको पता चला कि नहीं, ये कोई विशेष आत्मा है, महान आत्मा है, ऐसे उनको फिर निश्चय बैठता गया। दीदी आपको और एक प्रश्न करते हैं कि जब प्रकाशमणि दादी जी ने आपको टाइटल दिया था कि ये तुम तो शेरनी हो शेरनी, तो इस किस संदर्भ में आपको जब विदेश में कहीं गए थे तो ऐसे तो किस बात से आपको ये टाइटल मिला था?
क्या था कि मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहां 4 महीना पहली बारी रही, और उस समय राम काका करके अफ्रीका का भाई था, इंडियन भाई था, उसने 4 मास तो सेंटर को स्पॉन्सर किया। 4 मास के बाद उसके बच्चों ने विरोध किया, क्योंकि उसने अफ्रीका में सेंटर्स खोले मॉरिशियस खोला, ऑस्ट्रेलिया खोला, और ऑस्ट्रेलिया में उसकी लड़की थी, वो खुद कमाकर खाती थी, और हम तीन रहते थे, तो मकान का किराया, कार और खाना पीना जो भी खर्चा होता था वो राम काका करता था। तो उसके बच्चों ने विरोध किया, पहले तो ज्ञान में थे लड़के, परंतु पीछे लड़की ने विरोध किया ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली के, मैं नौकरी करके कमा के खुद खाती हूं, ये क्यों नहीं करते हैं आप, यदि पैसा भेजेंगे यहां तो हम गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये इल्लीगल था। तो मैं निकल रही थी ऑस्ट्रेलिया से, तो राम काका के भाई दाया काका, या अभी प्रतिभा जो है नैरोबी में, उसके पिताजी ने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया तक है, न्यूजीलैंड फिजी बहुत अच्छा है, आप वहां जाओ। तो फिजी का तो चक्कर लगाया, पर न्यूजीलैंड में ज्यादा रही, क्योंकि वहां एक फैमिली ने अच्छा सहयोग दिया, उसके घर में रही और वहां जैसे क्लासेस वगैरह कराया, सारा परिवार ने ज्ञान लिया। और तो मैं अकेली थी, तो मैंने दादी को लिखा कि मैं अकेली हूं और घर वालों में से एक ज्ञान में पक्का था, जो दूसरे घर में रही थी, एक पक्का था, और उसकी युगल थी वो थोड़ी ज्ञान में नहीं थी। तो मैंने लिखा दादी को के थोड़ा फील करते हो कि जिसने घर, जिसके घर में रहो और वो घर वाली नहीं आए यहाँ क्लास में, तो अच्छा तो नहीं लगता है। तो दादी ने कहा तुम तो शेरनी हो, हाथी झुंड में घूमता है, तुम अकेली शेरनी घूमती हो।
तो दादी ने, प्रकाश बनी दादी जी ने दीदी को खास से टाइटल लिया था, तुम तो शेरनी हो, क्योंकि उस जमाने में देश विदेश जाना, सेवा करना, खुद खाना अपने हाथ से बनाना, और खुद, क्योंकि बीके को कोई होते नहीं थे, तो बहुत बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती थी। दीदी जी एक और प्रश्न है कि आप हैं सीधा और साफ, सीधा बोल देते, जैसे क्लास में थे कोई तुमने मास्क नहीं पहना, तो इधर तो दीदी आपके अंदर कहाँ से हिम्मत आती, क्योंकि कई लोग घुमा फिरा के बोलते हैं ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कोई भी बात नहीं हमने देखा, आप स्ट्रेटली जो है सीधा और साफ बोल देते, ये किस रूप में आपको ये कहाँ से हिम्मत आती है?
जैसे बाबा कहते हैं सच सो बिठो नच, सच्चाई है। तो वो कहने में क्या हर्जा है, क्योंकि उससे क्या है कि और भी सच्चे मार्ग पर चलेंगे। आजकल तो प्लेन में भी क्या है, कोई मास्क नहीं पहनते पहनते हैं तो दंड मिलता है, फाइन। मैं आज पढ़ रही थी अमेरिकन एयरलाइंस ने $7,00,000 फाइन में कलेक्ट किया और दो जनों को तो 70,000 डॉलर की फाइन की, क्योंकि उन्होंने उन्होंने अच्छी रीत से बिहेव नहीं किया और एयर होस्टेस पर थूका, उसको एयर होस्टेस ने मैनर्स अच्छे नहीं थे तो कड़ी बांधी तो उसके ऊपर थूका और इसलिए उनकी मैनर्स अच्छी नहीं थी तो दंड दिया। तो क्या है कि डिसिप्लिन हमारी मर्यादा ये वो सब तो पालन करनी है, हमारे कल्याण के लिए ही बाबा ने सब डिसिप्लिन मर्यादाएं रखी है तो उसका तो पालन करने से हमको ही फायदा होता।
जी दीदी, क्योंकि आप खुद भी नियम पे चलते और सबको बताते तो वो उन तक पहुंच भी जाता है और कई एक आधा छोड़ के काफी फॉलो भी करते हैं। दीदी जी, हमारे सामने बहुत सारे परिवार में रहते हैं, गृहस्थ चलाते हैं और बाबा भी गृहस्थी चलाते थे तो भी बाबा इतने आगे निकल गए। हम सभी को ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए जो गृहस्थ में रहते हुए बाप समान कैसे बने, इसके बारे में थोड़ा सा।
मेन बात है नष्टो मोह। परिवार में रहकर मैंने देखा है कि ब्रह्मचर्य पालन करना इतना डिफिकल्ट नहीं जितना नष्टो मोह बनने में या देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। तो वो जितना जितना हम नष्टो मोह बनेंगे बाबा की याद रहेंगे, तो बाबा की याद रहने के मम्मा बाबा को फॉलो करना है, उड़ती कला में रहना, उमंग उल्लास ज्ञान योग के पंख हम धारण करके उड़ती कला में रहेंगे तो विघ्न नीचे रह जाएंगे, परिस्थिति तो आएंगे परंतु हमारे में जितना बल होगा, निश्चय होगा, हिम्मत होगी तो हम सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेन बात है कि हम पावरफुल अमृत वेला रखे, मुरली पढ़े, सारा दिन मुरली का मंथन करें, कर्मयोगी बनकर रहें तो हमारी स्थिति ऐसी ऊंची होंगी जो परिस्थितियों को हम पार कर लेंगे। टाइम हो गया
अभी है
8:05 हुई।
हाँ जी, सवा आठ तक है।
सवा आठ,
हाँ जी,
5 और।
ठीक है दीदी,
हमारी गाड़ी में 8:10 हुई।
दीदी एक और प्रश्न है कि जैसे ब्रह्मा बाबा जब शुरुआत हुई यज्ञ की तो बहुत सारे निंदा, मान सम्मान मिले लेकिन निंदा, कोई गालियां भी दी, बहुत कुछ। तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी आई होगी, कोई कुछ गलत बोल रहा है, दीदी ठीक नहीं, दीदी ऐसी नहीं, दीदी वैसी नहीं, तो भी आप अपनी अवस्था एकदम पावरफुल और स्टेबल रखते हो, ऐसी कौन सी ऐसी आपके अंदर विशेषता है जो आप उस अवस्था को एकदम स्टेबल रखते हैं?
क्या है 1985 में, 84-85 में कई विदेशियों को ये लगा कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो हमको इंडियन बना रही है, इंडियन कल्चर बना रही है हमारे, हमको सफेद कपड़ा पहनने के लिए कहते हैं, कुर्ता पैजामा साड़ी पहनने के लिए कहते हैं, बाल लंबा रखने के लिए कहते हैं। कल की मुरली में भी ये है पॉइंट कि समझते हैं ये इंडियन कल्चर है, हम तो वेस्टर्न हैं, हम वेस्टर्न हैं तो हमको कपड़ा वेस्टर्न पहनना चाहिए और म्यूजिक भी हमें ट्रैफिक कंट्रोल का इंडियन नहीं होना चाहिए। तो कोई लोग थे जो कहते थे हमको मधुबन की याद आती है, ट्रैफिक कंट्रोल का जो मधुबन में गीत बजते हैं वही बजे, और ये लोग कहे कि हमें इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक चलाना चाहिए ना कि इंडियन, हम समझते नहीं है क्या फायदा। तो इसलिए उन्होंने ऑपोजिशन किया कि ये भोग कर ऑफर करना ये भी तो भक्ति है आदि आदि। तो हमने कहा और बाबा ने भी मुरली में कहा कि आपको ये ब्राह्मण कल्चर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ये जो भी कर रहे हो ब्राह्मण कल्चर है, इंडियन कल्चर नहीं है। और हमने भी कहा कि हमने जो बाबा से सीखा वो हम औरों को सिखाते हैं, ये मेरा तो कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो विरोध किया हमने परवाह नहीं की और हम अपना जो करते रहे करते रहे। तो वो लोग बोल बोल के थक गए और भागमती हो गए।
जो रहे वो अच्छे चल रहे हैं, जो रहे वो अच्छे चल रहे हैं।
हाँ, जो मानते थे कि ये हमें जो हम करते हैं ये ब्राह्मण के रीत से करना जरूरी है तो करते रहे।
दीदी, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो आप वर्तमान समय यूक्रेन में चल रहे है युद्ध और उसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या थिंकिंग करना है, बाबा के साथ कैसा रिलेशन रखना है, निडर बन के कैसे रहना है, थोड़ा इसके पर करके पूरा करते हैं।
बाबा ने हमें पहले से सावधान किया है कि ऐसी परिस्थिति आएंगी, नेचुरल क्लिमिटीज, सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर, वो होना ही है। तो इसलिए डरना नहीं है, जैसे कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार, दुनिया वालों का मौत होगा और हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप खुशी में रहो, वो लोग हाहाकार में हलचल में आ जाएंगे, हाय हाय करेंगे और आपको वाह वाह करनी है। तो निडर तो बनना पड़े क्योंकि ईश्वरीय मार्ग है शूरवीर का, कायर नहीं चल सकता है। भक्ति में भी कहते हैं कि आपको शूरवीर बनना पड़े, तो हमारे पास तो बहुत हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि शुरू से ही सामना होता है। आप ज्ञान में आओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो भी पंचा घर वाले कहेंगे ये क्या, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र क्या रहना है। या भक्ति क्यों छोड़ी, या खान पान बाहर क्यों नहीं खाते आदि आदि, पहले परिवार का विरोध होता है। फिर संस्कारों का टक्कर ब्राह्मणों से भी कभी कभी होता है, और फिर अपने संस्कारों से लड़ना होता है। बाहर का युद्ध तो होगा ही, पर अपने अंदर के संस्कारों के साथ भी लड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं, कहेंगे या तो हम मरेंगे या तो मारेंगे, ये निश्चय से जाते हैं। तो हमें भी मरना भी पड़ता है संस्कारों से, और औरों के संस्कारों को मारना भी पड़ता।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, हम सब के तरफ से दीदी को ताली बजाते हुए थैंक यू करते हैं। आपने कम समय में बहुत सारी बातें का, जैसे नहीं सागर को गागर में समा दिया, बहुत सारे लोगों के अंदर के जो क्वेश्चन है वो भी उन्होंने पूरा सुन लिया, और वहाँ जाके भी अपने जीवन में उसको धारण करेंगे और ये बातें अपने जीवन में लाएंगे। जो जो यहाँ भट्टी में आपको प्राप्ति हो रही है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, अपने घरों में जाके उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है, और घर जाके पता चलना चाहिए कि हाँ ये माउंट आबू में गए थे तो इनके अंदर बहुत सारा चेंजेस आया है, परिवर्तन आया है। तो आप सभी इसका विशेष ध्यान रखना। विश्व में एक अलग प्रकार की स्थितियां बन रही है, तो बोलते ना अंत मति सो गति, तो हमारी अंतिम अवस्था भी बहुत ही पावरफुल अच्छी। और वैसे दीदी ने कहा कि हमको निडर रहना है, और सचमुच हमारे साथ कौन है, हमारे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान और हमारी सारी जो दादियां है उनका मार्गदर्शन है। दीदी ने आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, तो ये सब हम अपने जीवन में उतारना है और हमें बहुत ही आगे बढ़ते जाना है, और हम अपने जीवन से औरों को भी सिखाना है। अपने आप लोग सीखेंगे, जब आपका जीवन अच्छा बनता जाएगा आपको लोग देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दीदी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओम शांति। अब हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं और इस प्रोग्राम के लिए समापन करते हैं। ओम शांति।